તારીખ 24/9/1997 શ્રી પ્રવચન સાર ગાથા 1 અને 2 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કલકત્તામાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 218
મંગળ કર્યું છે, પ્રતિજ્ઞા કરી છે કે હું નિયમ સાર કહીશ. બીજી વ્યથામાં મોક્ષ માર્ગ અને તેનું ફળ એ બંનેના સ્વરૂપનું નિરૂપણ કર્યું છે. મોક્ષ માર્ગનું સ્વરૂપ કેવું હોય અને તેનું ફળ કેવું હોય બીજી ગાથામાં એ વાત છે. નિયમસારમાં પ્રત્યેક ગાથામાં ગાથાનો વિષય શું છે, અહીંયા આ ગાથામાં અહીંયા શું કહેવું છે એ ટીકાકાર આચાર્ય સ્પષ્ટ કરીને પછી ટીકા કરે છે. તો પહેલી ગાથામાં એમને માંગણી કરશે સર્વજ્ઞ દેવ પ્રણામ કર્યા છે, વંદન કર્યા છે, પ્રતિજ્ઞા કરે છે કે હું નિયમસાર કહીશ. બીજી ગાથામાં મોક્ષ માર્ગનું સ્વરૂપ અને તેના ફળનું સ્વરૂપ, મોક્ષનું સ્વરૂપ, માર્ગનું ફળ મોક્ષ છે. હા, એ આમાં કે બીજી ગાથામાં કહે છે કે નિયમ એટલે શું, કે નિયમપૂર્વક કરવા યોગ્ય. નિયમ એટલે અવશ્યપણે ચોક્કસપણે કરવા યોગ્ય, અને એમાં પણ જે સારભૂત છે તે નિયમ સાર કે છે. શું છે, માર્ગ તો સમ્યક દર્શન જ્ઞાન ચારિત્ર છે, શુદ્ધ રત્નત્ર છે, માર્ગ નું ફળ છે એ મોક્ષ છે. પછી આચાર્ય આજે નિરાત છે, આચાર્ય નથી ટીકાકાર, તો બલધારી દેવ મુનિ છે, પણ પોતે ભાવિ તીર્થંકર છે. આમ નિરાજ છે, પોતે ભાવિ તીર્થંકર છે, એવો સંકેત એમણે એક કળશમાં શ્લોકમાં કર્યો છે. આચાર નહીં હોવા છતાં ટીકા અસાધારણ થઈ છે એમનાથી, અને એમાં પણ એમને બહુ ભાષા અલંકારનો પ્રયોગ ઘણો થયો છે. જેમ કે માર્ગ તો શુદ્ધ રત્નોત્રી હૈ ઓર માર્ગ કા ફલ મોક્ષ એમ નહીં કહેવાને બદલે માર્ગ કા ફલ મુક્તિ રૂપી રમણી કે વિશાલ ભાલ પ્રદેશ મેં શોભા અલંકાર રૂપ તિલક બના હૈ, એટલું લાંબુ લખ્યું છે. મુક્તિ રૂપી સ્ત્રીનો વિશાળ ભાલ એટલે વિશાળ કપાળ, એ પ્રદેશમાં જે તિલક કરે છે એ શોભાનો અલંકાર રૂપ તિલકપણું છે. मतलब मार्ग फल मुक्ति रूपी मरणी को रमणी को वरण करना है। इस प्रकार वास्तव में दो प्रकार का चतुर्थ ज्ञानधारी पूर्वाचार्यों ने परम वितराग सर्वज्ञ के शासन में कथन किया है, मार्ग और मार्ग फल का। ऐसा दो प्रकार का चतुर्थ ज्ञानधारी मतलब मन प्रयोग ज्ञान को धारण करने वाले पूर्वाचार्यों ने तो गंधर आदि ने परम वितराग सर्वज्ञ के शासन में कथन किया है। निज परमात्मा तत्व के सम्यक सिद्धांत ज्ञान अनुष्ठान रूप शुद्ध रत्न त्रयात्मक मार्ग परम निरपेक्ष होने से मोक्ष का उपाय है और शुद्ध रत्न त्रय का फल स्वात्म उपलब्धि मैंने निज शुद्ध आत्मा की पूर्ण आत्मा की पूर्ण प्राप्ति है। एक अहम महत्वपूर्ण बात ये कर दीजिए हमने बात करता 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 कि निज परमात्मा तत्व के सम्यक सिद्धांत ज्ञान अनुष्ठान माने आचरण उस रूप शुद्ध रत्नात्रयात्मक मार्ग परम निरपेक्ष है। एक महत्वपूर्ण बात करी परम निज निरपेक्ष माने पर की उसको कोई अपेक्षा नहीं, वो पर के कारण से उत्पन्न नहीं हुआ है, अपने सम्यक पुरुषार्थ के कारण से ही उत्पन्न हुआ है, इसलिए इसमें कोई पर की अपेक्षा नहीं। अमुक प्रकार के संयोग इष्ट संयोग या अमुक प्रकार के अनिष्ट संयोग का वियोग हुए तो मार्ग प्राप्त हुए, वो बात शुद्ध रत्न त्रयरूप मार्ग पर लागू नहीं पड़ते, वो दोनों से निरपेक्ष है। वो कहां से समझा जाता है, मुमुक्ष को कहां से समझा जाता है कि मुमुक्ष की रुचि ही संयोग वियोग को नहीं गिनती, मुमुक्ष जीव की आत्मरुचि है वो संयोग वियोग को नहीं गिनती, सभी प्रकार के संयोग वियोग को गौण करके उसको ओवरटेक करके वो अपना प्रवृत्ति करती है। आत्मरुचि जब ऐसे कार्य करती है तो इस रुचि के फल में जो मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ वो मोक्ष मार्ग पर के क्यों अपेक्षा रखेगा कि इस प्रकार का पर हो तो ये रत्न परिणमन करे वरना नहीं करे, वो बात नहीं रहती।
ये निरपेक्ष भाव से संवेग उत्पन्न हो जाता है, निरपेक्ष हूं इससे संवेग उत्पन्न हो जाता है, किसी का आश्रय
अवलंबन की जरूरत नहीं है, वो तो स्वरूप निरालंब निरपेक्ष है और उसकी प्राप्ति का मार्ग भी ऐसा ही निरपेक्ष है, उसमें कोई पर की अपेक्षा नहीं और स्वयं के विकल्प और भेद के भेद है, पर्याय भेद गुण भेद उसकी भी अपेक्षा नहीं।
तो ज्ञानी नहीं परिणाम
कैसा
ज्ञानी ना परिणाम नहीं
रत्न त्रिका श्रद्धा ज्ञान चारित्र तीनों तो स्वरूप जो मोक्ष मार्ग है तो निरालंब निरपेक्ष स्वरूप से अभेद होने से उसको पैदा होने में भी किसी की अपेक्षा नहीं, वो भी किसी की अपेक्षा बिना ही प्रवृत्ति करता है, किसी की और की तो अपेक्षा नहीं लेकिन स्वयं के भेद की भी अपेक्षा नहीं कि भेद को लक्ष्य में ले तो अभेद भाव मिले, ऐसे भी नहीं है, भेद निरपेक्ष और पर निरपेक्ष ऐसा मोक्ष मार्ग का निरपेक्ष स्वरूप है। इसलिए पहले तो विचार हुए न, विचार में पहले तो भेद हुए न, ये अपेक्षा अभेद परिणमन को नहीं है। ऐसा अभिप्राय विचार भूमि की भूमिका में ही हो जाना चाहिए।
मैं परमात्मा हूँ जो ऐसे विकल्प को लेते हैं और वो विकल्प में अटक जाते
हैं। हाँ, इसलिए पूछा, वो दूसरे दिन वो भाई आए ना तो हमने पूछा, क्योंकि उसका कहना ये है कि इस भाव में बुरा क्या है, आप निश्चय क्यों करते हैं, मैं परमात्मा हूँ, इसमें हमने कौन सा अनुचित परिणाम किया कि आप उसका निषेध करते हो। तो ये जो डायरेक्ट प्रश्न आया तो उस पर से हमने उनको पूछा कि मैं परमात्मा हूँ ऐसा भाव आपको परमात्मा को देख करके आता है या बिना देख करके आता है। जिसको देख करके आता है वो तो सही है, तो बिना देख करके आता है इसका मतलब कि आप तो अंधेरे में खड़े हो, तो अंधेरे में उजाला कहाँ से होगा, ऐसा है अंधेरे में अंधेरा को बनाए रखना है या कोई उजाला में आना है आपको, तो आपके यहाँ उजाला था ही। गुरुदेव ये कहते थे कि आपका जो स्वभाव है माने चैतन्य रत्न है वो अंधेरे में खोया हुआ नहीं है,
उजाला
में खोया हुआ है, उसको अंधेरे में मत खोजो, अगर उसे खोज करना है तो ज्ञान में खोजो, वहां प्रकाश है, प्रकाश में पड़ा है, अंधेरे में नहीं पड़ा है। वो बात करने कहा तो उसमें उस बात को ग्रहण करने में क्या आपत्ति है कि नहीं नहीं मैं तो अंधेरे में ये क्या करूंगा, इसका मतलब क्या। जब आपको कोई प्रकाश में ले जा रहे हैं, ज्ञानी तो आपको प्रकाश में ले जा रहे हैं, आप अंधेरे में खड़े हैं, अंधेरे में खड़े खड़े परमात्मा का मैं परमात्मा हूँ ऐसी घटना करते हो, तो आपको प्रकाश में ले जा रहे हैं तो आपको कौन सा इसमें निषेध आता है, क्यों निषेध आता है, किस बात का निषेध आता है, कि आपकी जो पकड़ है मैं यथार्थ कर रहा हूँ इसलिए अयथार्थ पकड़ में यथार्थता का निषेध आता है, ये गड़बड़ है। ये सीधी साधी बात, सरल बात नए मुमुक्षु को समझ में आ जाएगी, ये 50 वर्ष वाले को समझ में नहीं आएगी।
खोज नहीं है,
बिना खोज ऐसे ही रटी रटाई बात को पकड़ करके बैठ गए हैं। पहले तो विकल्प आई जाने, पहले तो विचार आई जाने, तो यहाँ नियम सार की दूसरी बात हमने ये महत्वपूर्ण बात रख दी, मोक्ष मार्ग को कैसा है ऐसा बताते हुए उन्होंने ये बात रख दी कि निरपेक्ष है, उसको कोई की अपेक्षा नहीं है, वो स्वयं अपनी ताकत से काम चलता है, वहाँ कोई दूसरों की अपेक्षा नहीं, भेद विचार की भी अपेक्षा नहीं है, भेद मैंने भेद विचार की अपेक्षा नहीं है, ऐसी बात है। तो लेकिन पुरोई में तो आता है, तो आता है तो सकाल में आने दो, इसके कारण से ये नहीं हुआ है, पुरोई में भेद विचार आया इसलिए ये मोक्ष मार्ग प्रकट नहीं हुआ है, अगर इसीलिए ये प्रकट होता तो जितने को विचार आएगा उतने को सबको ये मोक्ष मार्ग प्रकट हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जाता, ऐसी बात है। अपने घूमने का कौन सा टाइम है, 5 से 7। गुरुदेव इस बात को बहुत आगे करते थे, मोक्ष मार्ग निरपेक्ष है, देखो नियम सार की दूसरी बात है, मोक्ष मार्ग निरपेक्ष है, जिसको कंपेरेटिव नॉलेज नहीं है कि विचार ज्ञान की ताकत कितनी और निर्विकल्प परिणाम की ताकत कितनी, उसका कंपेरेटिव नॉलेज जिसको नहीं है उसको मोक्ष मार्ग की निरपेक्षता की ताकत ताकत है उसका पता नहीं होने से तो उसका आधार लेने का अभिप्राय रख करके बैठ जाता है कि मैं ऐसा विचार करूंगा तो आगे ऐसा होगा, मैं ऐसा विचार करूंगा ऐसा विकल्प मुझे होगा तो आगे ऐसा बनेगा, ये गलत आधार बुद्धि, विकल्प की आधार बुद्धि हो गई। जबकि निर्विकल्प मोक्ष मार्ग के परिणाम स्वरूप से जो अभेदता उस काल में उसको शक्ति है, तो जिस ताकत से शक्ति है वो तो उपादान से निकली हुई चीज है, जो आत्मा खुद अनंत वीर की खानी है उसमें से वो निकली हुई चीज है, उसमें प्रत्येक रात के विकल्प की कौन सी अपेक्षा रह सकती है, सवाल ही पैदा नहीं होगा। जिसको अपनी अनंत ताकत की प्रतीति आती है, पहले प्रतीति आती है ना लक्ष्य को स्टेज में अनुभवांश से प्रतीति, वो अनुभवांश में प्रत्यक्षता प्रत्यक्ष तौर से प्रतीति आई, तो बार बार उस प्रतीति में प्रत्यक्ष कर करके उसका प्रसाद सुखाया खाता है, अंदर से जोर आता है, बाहर से कुछ नहीं आता, अंदर से जोर आता है और अभेदता सभी है स्वरूप के साथ, श्रद्धा भी, श्रद्धा में भी, ज्ञान में भी, आश्रय में भी, तीनों में अभेदता सत्य है और वो ऐसा ही मोक्ष मार्ग का निरपेक्ष स्वरूप है।
ज्ञानी
के जानने में आ सकते हैं, जो निरपेक्ष ऐसा स्वरूप है ज्ञानी को जानने में, हाँ ज्ञानी को सारा नियम सार ग्रंथ है ना, वो ज्ञानी को अपनी आत्म भावना बढ़ाने का एक अच्छा निमित्त है, क्योंकि कुंदकुंद आचार्य देव ने अपनी आत्म भावना के लिए ये ग्रंथ रचना उसकी हुई है, शायद 175 गाथा है, 187 गाथा है, 187 गाथा है, 187 गाथा में आत्म भावना ही उन्होंने भाई है। अगर किसी मुमुक्षु को और किसी ज्ञानी को ऐसी जिज्ञासा हो गए कि महान आचार्य लोग जंगल में आत्मभावना कैसे भाते होंगे, कुंद कुंद जैसे महान आचार्य लोग होते हैं कि आत्मभावना में रहते हैं, तो उनकी आत्मभावना कैसी होती होगी इसका कोई सबूत है तो ये नियम सार है, इसकी आत्मभावना का ये मूर्त स्वरूप है, अमूर्त ऐसी आत्मभावना का मूर्ति मंत्र स्वरूप है, वो नियमानुसार उन्होंने भावना भाई है, तो ज्ञानियों को तो वो आत्म भावना में निमित पड़ता है, इसलिए ज्ञानी उसका स्वाध्याय करते हैं। मुमुक्षु में जिस मुमुक्षु को आत्मरुचि अधिक होती है और आत्म भावों को और आत्म स्वरूप को सुनते सुनते, आत्मभावना को सुनते सुनते जिसकी रुचि पुष्ट होती है, बढ़ती है, उनके लिए भी वो निमित होता है, ऐसे ये मोक्ष का प्रयोजन में ऐसी मर्यादा है।
ये तो ज्ञानियों को प्रत्यक्ष ऐसा दिखता है, तो आप मोक्ष को उसका प्रत्यक्ष उनको दिखता है, अनुभव नहीं होता, उसकी तो वो उठा करके मनुष्य को तो निरपेक्ष दिखता नहीं है। तो वहाँ एक विकल्प चलने का अवकाश होता है, वहाँ एक विकल्प या कल्पना का अवकाश होता
है। उसमें क्या हुआ है कि जिसको भाव भाषण नहीं है और मैं परमात्मा में, परमात्मा में कारण परमात्मा ऐसा लेता है, तो खुद तो स्वरूप का अवलंबन में नहीं आया होने से परावलंबन में दीनता में तो खड़ा ही है। परमात्मा है वो तो निरपेक्ष तत्व है, उसको देखा नहीं, पर खुद उसको नहीं देखने के कारण से अपेक्षा वृत्ति में खड़ा है। उस अपेक्षा वृत्ति में खड़ा रह करके एक नई अपेक्षा वृत्ति को पैदा करते हैं कि ऐसा विचार ऐसा विकल्प चलेगा तो मेरा काम हो ही जाएगा। एक नई अपेक्षा उसने खड़ी कर दी और उसका आधार ले लिया उसने। अब उसको कोई आधार छुड़ाते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता, जिस तरह ये हालत हो जाती है। तो उस परालंबन में निरपेक्ष ऐसा मोक्ष मार्ग कहां से प्रकट होगा? और परालंबन में खड़े रह करके निरपेक्ष ऐसा द्रव्य का भावभाषण माने दर्शन भी कहां से होगा? एक तो वागड़ा के स्वाध्याय के दौरान एक विचार वो भी आ गया एक दिन, फिर मैंने उसको विशेष रूप से थिंकिंग में लिया भी नहीं और उसकी चर्चा भी नहीं की। एक दिन स्वाध्याय में वो बात चल गई थी कि माँ अपेक्षाओं का ज्ञान कर लेते हैं, निश्चय से आत्मा ऐसा है, व्यवहार निश्चय आत्मा का स्वरूप ऐसा है और जैसे समय सार की एक पॉप गाथा है, गुरुदेव जिसको संजीवनी बोलते थे तो मुर्दे को भी सजीवन किया जाता है संजीवनी औषधि से, ऐसी ये गाथा है वो 11वीं गाथा है कि व्यवहार वो अभुजत्थो भुजत्थो देशी दो शुद्धनयो भुजत्थम वसीदो खलु समाधि हवधि जीवो। तो व्यवहार मात्र अभूतार्थ है, एक त्रिकाली शुद्ध नहीं ही भूतार्थ है, शुद्ध नहीं मैंने शुद्ध नहीं स्वरूपी आत्मा ही भूतार्थ है। और ऐसा शुद्ध स्वरूप का, शुद्ध नहीं के विषयभूत स्वरूप का जो आश्रय करता है भूतार्थ भूतत्थम वसीदो, वो सम्यक दृष्टि हो जाता है। अब सम्यक दृष्टि होना ये व्यवहार नहीं का विषय है। तो हमको विचार आ गया कि आचार्य की कमाल देखो, तो व्यवहार मात्र को अभूतार्थ करके व्यवहार को जोड़ देते हैं, लोगों को समझ में नहीं आती ये बात कि कला कैसी है कम बात करने के। व्यवहार मात्र को अभूतार्थ कर दिया है, मैंने पर्याय मात्र को अभूतार्थ कर दिया क्योंकि त्रिकाली में पर्याय नहीं है। तो एक त्रिकाली ही भूतार्थ है सत्यार्थ है, लेकिन इसकी भूतार्थता और इसकी सत्यार्थता उतनी तो बात हमने कही थी कि इसकी भूतार्थता और सत्यार्थता कैसे है कि उसको देखते हैं तब है, वो बात तो कर दिया था हमने उसी वक्त, हमको लाइट हुआ था अंदर कि देखो ये व्यवहार को और भूतार्थ कहने वाले साथ साथ कह देते कि ये जो भूतार्थ का आश्रय करता है वो सम्यक दृष्टि है, तो आश्रय करना पर्याय में और सम्यक दृष्टि होना पर्याय में है, इस बात कहने की आवश्यकता क्यों हुई? आप तो व्यवहार मात्र को अभूतार्थ करके उड़ाते हो, जब आप उड़ाने की बात करते हो उस वक्त तो उसकी स्थापना कैसे आ गई?
वैसे यही भूल होता है, ये जो भूल हुआ है वो पतंजलि ने बोले व्यवहार को उड़ाते हैं, तो इसका मतलब व्यवहार को जितना इम्पोर्टेंस है उतना इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं इसलिए। उसको निश्चय में कि विषय को इतना ग्रहण कर लिया है, जो तरीका है कला है, कला को बिल्कुल निषेध कर दिया है, तो कला को ग्रहण करके वो निषेध है।
हाँ,
कला तो हम समझे नहीं,
तो मतलब मोक्ष मार्ग की जो कला है, ज्ञान कला है, जिस ज्ञान कला से वो अपने स्वरूप को देखता है, उसमें कला गौण है और स्वरूप मुख्य है, इतनी सी बात है। बात तो उतनी सी ही है, परंतु वो कहते कि नहीं, स्वरूप 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 स्वरूप, हमको तो कला की बात सुननी नहीं है। तो बिना कला तुमको पता चला कैसे? किस ज्ञान में वो निश्चित स्वरूप आया, कि ज्ञान में आए बिना ऐसे ही स्वरूप स्वरूप है, स्वरूप ऐसा स्वरूप ऐसा स्वरूप है। मतलब दो प्रयोजनभूत बात है, जो अभिधेय है, अभिधेय मैंने कहने योग्य है, ऐसी दो बात का मुद्दा है। प्रयोजनभूत बात तो दो ही, एक अपना स्वरूप आत्मा, आत्मस्वरूप, वो अभिधेय है। अभिधेय मैंने कहने वालों ने जिसको कहने का अभिप्राय रखा है उसको कहने में आता है अभिधेय। एक तो वो बात है, अपना स्वरूप अभिधेय है, और दूसरा अभिधेय वो है कि वो प्राप्त कैसे हो, इसका अनुभव कैसे हो, वो उतना अभिधेय, वो भी अभिधेय है। अगर अभिधेय में वो बात नहीं होती, स्वरूप ही होता, तो स्वरूप किस ज्ञान में जाना तब ऐसा है? अनादि से तो तुम अनजाने हो, जब अनजाने हो तो ज्ञान में तो वो आएगा, तब तो ये है, ऐसी बात हुई नहीं कि ऐसा है ऐसा है ऐसा है। तो ऐसा है ऐसा जो ज्ञान स्वाभिमुख होता है, वो तो स्वरूप से अभेदता साधता है, श्रद्धा से, ज्ञान से, चारित्र से। अभेदता सत्य है तब तो उसकी प्राप्ति बोली जाती है, प्राप्त की प्राप्ति तब तो बोली जाती है। तो इसलिए स्वरूप से ये स्वरूपाकार परिणमन अलग नहीं रह सकता। तो आचार्य ने व्यवहारों और भूयत्थों कहकर के भूतार्थ का आश्रय या सम्यक दर्शन को साथ में जोड़ दिया। अभी एक बात पकड़ लेता है कि व्यवहारा भूतार्थ है, व्यवहारा भूतार्थ है, बात मत करो, बात मत करो, लेकिन कहने वाले तो आश्रय और सम्यक दर्शन की बात कहकर के वो बात प्रस्थापित किया है, इसका क्या? भूतार्थ तत्व मेरी आत्मा है, वो बात का आश्रय करके बोला है। क्या आश्रय करो? वो तुमको सम्यक दर्शन हो जाएगा, आश्रय करो तुमको सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो सम्यक दर्शन तो खुद अभूतार्थ है, आश्रय खुद अभूतार्थ है, तो वो तो पर्याय दोनों। इसके बाद जोड़ने का मतलब क्या रहा फिर? ये बात को प्रश्न तो उठाते नहीं, और पर्याय मात्र नहीं चाहिए, पर्याय मात्र की बात नहीं चाहिए, पर्याय मात्र की बात नहीं चाहिए, लेकिन कहने वाले ने तो जोड़ दी है, वो ध्यान में आया नहीं। इसलिए ये एकांत हो जाता है और ये भूल हो जाती है। जबकि आचार्य ने तो अनेकांतता रखित रख करके उस भूतार्थ को स्थापित किया है, अनेकांतिक वाणी में, अनेकांतिक ज्ञान में उसकी स्थापना की है, ऐसा नहीं किया है।
सामने श्रीगुरु बताते भी हैं तो हम आग्रह ज्ञान छोड़ना चाहते हैं, उसमें क्या है कि उनके प्रति अधूरा निश्चय है, हम मानते हैं कि हम तो जरूर मानते हैं, एक प्रार्थना में खड़े करके पतन जिससे बताते हैं, हम मानते थे भैंस को पक्के, ये बात तो नहीं है, भैंसी को मानते नहीं, मानते थे क्यों छोड़ देते थे आग्रह,
क्या खुद ने उस बात का निषेध किया है। अब वो बात का निषेध किया है, वो मेरी भूल हुई। अब तक जितना भी मैंने कहा सिखाया, ये मेरी भूल थी। वो बहुत ताकत वो भी कर सकता है, हाँ आई जाएगी।
नहीं छोड़ने
के
कारण
ये है, खास कारण है। खुद ने निषेध किया है सबके सामने। बस वही सो अब तो बोला, बिल्कुल वही बोला कि जो लोग उनको सुन रहे हैं वो तो सब चौंके हैं, और कई लोग तो इसे हंगाते थे, जैसे मनोरमा बन मुख्य है वहाँ सभी लेडीज में, और सत्संग भी कराती है, तो बिल्कुल सम्मत करते थे, एक एक बात को सम्मत करते थे अपनी चेष्टा से। बोलती नहीं थी लेकिन उनकी चेष्टा देखते थे बार बार, ऐसा 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 ही है, ऐसा ही है, ऐसा ही। अब क्या होगा, जो जिसको सुनाते थे वो जो तो उसको हाजिर करने वाले थे वही उनको आदमी बन देंगे, और आदत बिगड़ेगी उनका। और हमको कोई भी प्रवृत्ति आत्मकल्याण के कारण से करना है या कोई दूसरा कारण से करना है, अगर हम सत्य को ग्रहण करने की का अवकाश नहीं रखते तो हमारा मोटिव अलग हो गया कि नहीं हो गया? ये तो मोटिव अलग हो गया प्रवृत्ति का।
ऐसे सहज मार्ग पर प्रवेश होने से ना सब सहज होता है, नहीं तो जिस करना चाहे तो कर नहीं सकता, तो विकल्प के घोड़े चलते।
यहाँ तो ऐसा कहते हैं कि निरपेक्ष होने से मोक्ष का उपाय है, अगर अपेक्षा रखता तो मोक्ष का उपाय नहीं होता, अपेक्षा रखने वाले बंधन में आ जाते, इसलिए मोक्ष का उपाय है।
अपेक्षा में तो परद्रव्य चाहिए ना,
परद्रव्य का बंधन है, तो परद्रव्य के अपेक्षा में तो बंधन ही बंधन है, वहाँ मोक्ष कैसे आएगा? मोक्ष मार्ग भी नहीं आएगा और मोक्ष भी नहीं आएगा।
इसीलिए जब होते ना निरपेक्ष है, जिनको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ ऐसा है, तो मैं ये सब माता कुछ कर रहा हूँ, सब छोड़ दूंगा। आचार्य मानव का एक एक वचन
देखो, बिना सत्संग और सत्संग में कितना फर्क पड़ता है। शास्त्र स्वाध्याय तो वही करते हैं, समर्पण भी इसका बढ़िया है, अच्छा है,
कंपेयर कर रहे थे,
कुछ नहीं है तो क्या हालत होती है
जिसका वजन कहाँ जाना चाहिए।
यथार्थता का जो विषय है वह
एकमात्र आत्मकल्याण की भावना के बिना शास्त्र स्वाध्याय आदि कोई भी प्रवृत्ति होगी यथार्थता नहीं रहेगी। प्रवृत्ति तो प्रवृत्ति है, सब करते हैं, ज्ञानी भी करते हैं, अज्ञानी भी करते हैं, मुमुक्षु भी करते हैं, यथार्थता मुमुक्षु को कब आएगी? एकमात्र आत्मकल्याण की भावना से, वरना मोटिव चेंज हो जाएगा। वरना उसको मार की इच्छा उत्पन्न ही नहीं हुई है, ये तो मार की इच्छा जिसको उत्पन्न होती है उसको वेदना आती है, ये सही इच्छा का स्वरूप है, वरना सही इच्छा हुई नहीं। और इच्छा सब पड़ी है, ये चाहिए वो चाहिए वो तो पड़ी है, इसमें आत्मा चाहिए वो बात आई कैसे? ये बात है।
एक ही शब्द में सब डाल दिया, एक शब्द में सब डाल दिया, एक शब्द में सब कह दिया कि वस्तु निरपेक्ष है,
निरपेक्ष है, मार्ग भी निरपेक्ष है।
मुद्दे की बात तो एक ही शब्द में कर दी,
इसलिए मैं वो एक बात लिया था कि आत्मा है वो बनिया है ऐसे मानने वाला नहीं है। इसका कारण वो है कि बाहर का जो सुख है उसका अनुभव जो है वो बार बार अनुभव करके उतना दृढ़ कर लिया है, उतना दृढ़ कर लिया है कि वो सुख नहीं है। उसको छुड़ाने के लिए स्वरूप सुख का दर्शन होना आवश्यक है। बात से कहां से छूट जाएगा? अगर बात से छूट गया होता तो बहुतों ने ये बात सम्मत कर ली है। आगम के कहने से, गुरुदेव के कहने से, न्याय युक्ति आगम से तो सबने सम्मत कर ली है। छूटी नहीं, इसका मतलब क्या है? स्वरूप सुख देखा नहीं तो ये सुख झूठा है, उसका झूठापन भी देखा नहीं, स्वीकार किया है, वास्तव में नहीं हुआ स्वीकार, कल्पना में स्वीकार हुआ है, वास्तव में नहीं हुआ है, कल्पना में हुआ, इसलिए कोई राग में ताकत तो है नहीं छुड़ाने की, ज्ञान में ताकत है छुड़ाने की, राग में ताकत कहाँ है, इसलिए नहीं छुटा। स्वरूप सुख ज्ञान में आवे तब तो वो सुख अकुलता रूप दिखे।
शरीर का जन्म होता है तो एक बार नामकरण होता है, हाँ, और वो अब कभी भूलते नहीं और
दृढ़ करा देते नहीं,
हाँ, और ज्ञानी आपका नामकरण करते जो वास्तव में आप हैं वो आप कभी स्वीकार करते नहीं कैसी विपरीत है जी,
वो दृढ़ हो गया
नहीं तो आपको किसकी माननी हो तो स्पष्ट समझ में आता ना। ज्ञानी बोलते आप जीव है, आपका नामकरण करते हैं जो आप वास्तव में है आप स्वीकार करते नहीं, और आपका शरीर का एक बार नामकरण आप कभी भूलते नहीं, कैसे भी
चले।